हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अमन की सगाई के बाद आंशी ने आर्टिस्टिक छोड़ने का फैसला किया। वो रिजाइन देने के लिए ऑफिस आई हुई थी। आंशी का चेहरा उतरा हुआ था। वो अमन के केबिन के बाहर थी और उसने धीरे से दरवाज़ा खटखटाया। अंदर आ जाओ आंशी, उसके बिना कुछ कहे ही अमन ने जवाब दिया। उसने उसे पहले ही आते हुए देख लिया था। अंदर जाने से पहले आंशी ने खुद को सामान्य किया और चेहरे पर नकली मुस्कुराहट ओढ़ ली। आंशी अंदर आए तब अमन ने कहा, लगता है आपका मिस्टर सिंह के साथ काम करने में मन नहीं लग रहा, कोई प्रॉब्लम है मिस जिंदल? अमन का ध्यान लैपटॉप स्क्रीन पर था, उसने आंशी की तरफ देखा तक नहीं। नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम है भी तो वो अब दूर हो जाएगी, आपकी भी और मेरी भी, बोलते हुए आंशी उसके टेबल के पास आई और रेजिग्नेशन लेटर का एनवेलप उसके सामने रख दिया। अमन हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था। ये क्या है मिस जिंदल? मेरा रेजिग्नेशन लेटर, इतने पढ़े लिखे तो आप भी हैं, खोलकर खुद देख लीजिए ना। आंशी उसकी तरफ देखने के बजाय इधर उधर देख रही थी। उसे डर था आई कॉन्टैक्ट होने के बाद वो खुद को रोने से रोक नहीं पाएगी। आपने इस कंपनी को मजाक समझ रखा है क्या? पहले मेरे जॉब से निकालने के बावजूद आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया और अब कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद यहाँ से जाना चाहती हैं। आप भूल रही हैं तो मैं आपको याद दिला दूं, आपने कंपनसेशन का अमाउंट खुद से बढ़वाया था, आप उसे देने के लायक हैं। अमन उससे बिल्कुल प्रोफेशनली बात कर रहा था, जैसे वो बाकी एम्प्लॉयज से करता था। ये आंशी को और भी चढ़ा रहा था। अब बस भी करो ये ड्रावा करना, आंशी का गुस्सा बेकाबू हो रहा था। वो चिल्ला कर बोली, मुझे यहाँ एक मिनट के लिए भी नहीं रुकना है, चुपचाप इस पर साइन करो और मुझे जाने दो। और मुझे ऑर्डर देने वाली आप कौन होती हैं? मैं इसे साइन कर दूंगा, उससे पहले मुझे कंपनसेशन का पूरा प्राइस चाहिए। आंशी को रोकने के लिए उसके पास यही आखिरी रास्ता था। मेरे पापा भर देंगे, मुझे यहाँ काम नहीं करना। अच्छा, वैसे तुम अपने पापा से फेवर कब से लेने लगी? तुम्हें तो उनका सरनेम तक यूज़ करने में प्रॉब्लम होती थी, अब उनसे इतने पैसे ले लोगी? खैर छोड़ो, तुम्हारी चॉइस है। क्या मैं जॉब छोड़ने का कारण जान सकता हूँ? अमन ने पूछा। हाँ जान सकते हैं, आपका हक बनता है। मैंने यहाँ कंपनी में बॉस के असिस्टेंट के तौर पर जॉब ज्वाइन की थी, पर अब मुझे कुछ और ही करना पड़ रहा है। मुझे यहाँ वर्क सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं ये काम छोड़ रही हूँ। मैंने जॉब छोड़ने के रीज़न में यही लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। आंशी की बात सुनकर अमन हल्का सा हंसा। उसके हंसने पर आंशी ने उसकी तरफ घूर कर देखा। इतना अच्छा जोक सुनाया है, हंसना तो बनता है। वर्क सेटिस्फैक्शन, तुमने पिछले ढाई महीनों में काम ही कौन सा किया है जो तुम्हें वर्क सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा? अमन उठकर आंशी के पास आया। उसे अपने पास आता देख आंशी कुछ कदम पीछे हट गई। मैं यहाँ से बाहर जा रही हूँ, आपने कहा था मुझे अपनी स्टडी कंप्लीट करनी चाहिए। मेरे डैड ने मेरे लिए स्विट्जरलैंड की यूनिवर्सिटी चुनी है, मैं वही जा रही हूँ। उसे अपने पास आने से रोकने के लिए आंशी ने उसे वहाँ से जाने का दूसरा कारण बताया। अमन फिर भी धीमे कदमों से उसके पास आ रहा था। पीछे हटते हुए आंशी केबिन की दीवार के पास थी और अमन उसके बिल्कुल करीब। तुम फिर झूठ बोल रही हो, बताओ यहाँ से क्यों जाना चाहती हो? उसने बिल्कुल धीमी आवाज में पूछा। यही कारण है, आंशी से दूर जाने को हुई तो अमन ने अपने दोनों हाथों से उसके हाथ पकड़ लिए और दीवार के लगा लिया। तुम मुझसे बच नहीं पाओगी मिस जिंदल, इसलिए यहाँ जा रही हो ना, क्योंकि मैंने लावण्या से सगाई कर ली। कल तुम्हारा चेहरा देखकर ही मैं समझ गया था कि अब तुम यहाँ और काम नहीं कर पाओगी। जब सब सच पता है तो क्यों कर रहे हो ये? लावण्या को भी तुमने अपनी बातों के जाल में ऐसे ही फंसाया होगा ना, आंशी ने भरी आवाज में कहा। उसकी आंखें नम थीं। उसके बात सुनकर अमन कुछ देर के लिए चुप हो गया। वो उसका चेहरा देख रहा था जिस पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। मैं भी तुमसे। एक पल के लिए अमन सब कुछ भूल गया और अपने दिल की बात आंशी के सामने रख रहा था। वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले आंशी ने उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया। ऐसा कुछ भी मत बोलना जिसके बाद मेरा यहाँ से जाना और भी मुश्किल हो जाए। हम दोनों अच्छे से जानते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। तुमने लावण्या से सगाई कर ली है तो बेहतर होगा उसके लिए लॉयल रहो। आंशी की बात सुनकर अमन उससे दूर हो गया। उसने आगे कुछ नहीं कहा और चुपचाप रेजिग्नेशन लेटर को साइन करके आंशी के हाथ में थमा दिया। तुम्हें कुछ कहना है? जाने से पहले आंशी ने पूछा। स्विट्जरलैंड जा ही रही हो तो वहाँ अपनी एजुकेशन कंप्लीट करना, बाकी कुछ और नहीं। तुमसे कभी इतनी समझदारी की उम्मीद नहीं थी, पर तुमने अपने साथ साथ मुझे भी बहकने से रोक लिया। मेरी किसी बात से तुम्हारा दिल दुखा है तो आई एम सॉरी। आंशी ने उसकी बात पर हामी भरी और वहाँ से चली गई। अमन अपनी केबिन की खिड़की में खड़ा उसे जाता हुआ देख रहा था। अच्छा हुआ जो तुम यहाँ से चली गई। शायद तुम्हारा यहाँ से जाना जरूरी भी था। यहाँ से जाने के बाद तुम अपनी जिंदगी आराम से जी सकती हो, जहाँ तुम्हें ना तो किसी विधिक रारा का डर होगा और ना ही किसी लावण्या से खतरा। अमन खुद को तसल्ली देने की कोशिश कर रहा था। शिवांगी विधिक को चेकअप के लिए डॉक्टर के पास लेकर आई हुई थी। डॉक्टर उसका चेकअप कर रहे थे तब शिवांगी बाहर थी। इस प्रोसेस में काफी टाइम लगने वाला था। मौके का फायदा उठाकर वो वहाँ से सीक्रेट एजेंसी ऑफिस जाने के लिए निकल पड़ी। वहाँ जाते ही वो सबसे पहले मिस्टर तेज प्रकाश दत्त के ऑफिस में घुसी। उसे अचानक वहाँ देख कर वो हैरान थे। सब ठीक तो है ना, तुम यहाँ क्या कर रही हो, मिस्टर दत्त ने पूछा। नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। दिव्याना उनके सामने लगी कुर्सी पर बैठ गई। मुझे नहीं पता इतनी बड़ी बात आपके सामने क्यों नहीं आई। खैर कोई बात नहीं, आपको ना सही, मुझे पता चल गया तो काम हो ही जाना है। तुम किस बारे में बात कर रही हो, मिस्टर दत्त चौंक कर बोले। आपकी बातों से साफ है अब तक अमन ने आपको मिशन से जुड़ी रिपोर्ट नहीं दी होगी। वो अपने काम को लेकर काफी एफिशिएंट और लॉयल है, तो आपने रिपोर्ट मांगी भी नहीं होगी। लेकिन किसी पर इतना भरोसा भी नहीं करना चाहिए। जो कहना है साफ साफ कहो, मिस्टर दत्त ने सख्त आवाज में कहा। ठीक है, फिर साफ साफ सुन लीजिए। आपको तो पता है मैं विधिक के यहाँ रह रही हूँ। साथ रहते हुए वो मुझसे घुला मिला भी है और उसने बहुत से राज मुझसे शेयर किए। उनमें से एक उसकी प्राइवेट लाइफ से जुड़ा है। वो एक लड़की से प्यार करता था और उसके लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसका इस केस से क्या लेना देना है? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मुझे उस लड़की के बारे में पता है। जस्म बताया था उस लड़की के बारे में, कुछ पता नहीं चला, यहाँ तक कि नाम भी। जानता हूँ वो हमारे बहुत काम आ सकती है, पर उसको ढूंढने में टाइम वेस्ट करना भी गलत होगा। मिस्टर दत्त को आंशी के बारे में सब पता था। और अगर मैं आपसे कहूँ कि वो लड़की हमारी आंखों के सामने ही है और ये बात अमन और उसकी पूरी टीम को पता है, फिर भी उन्होंने इस मामले में कुछ नहीं किया, तो फिर आप क्या कहेंगे? लावण्या ने अपना अगला दांव खेला। ऐसा हो ही नहीं सकता।
अगर नहीं हो सकता तो रखिए एक इमरजेंसी मीटिंग और पूछिए सब कुछ। मिस्टर दत्त, उन्होंने ना सिर्फ आपसे बल्कि मुझसे भी सच छुपाया। ये तो मैं लवी की इंगेजमेंट में गई थी, कोइंसिडेंटली वहाँ वो लड़की आई हुई थी और बातों बातों में लवी ने मुझे बता दिया। वो लड़की अमन के ऑफिस में पिछले 2.5 महीने से काम कर रही है और वो उसका सच भी जानता है। सब कुछ जानते हुए भी उसने उस लड़की को अरेस्ट करना तो दूर, उससे पूछताछ तक नहीं की। उल्टा वो तो उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। उसने अपने बाकी टीम मेंबर्स को भी उस बारे में आपको बताने से मना किया है। दिव्याना ने उन्हें बीच में बोलने का मौका तक नहीं दिया और सारा सच मिस्टर दत्त को बता दिया। सब कुछ जानने के बाद मिस्टर दत्त के चेहरे पर गुस्से के भाव थे। उन्होंने अमन से इस बात की उम्मीद बिल्कुल नहीं की थी। तुम्हारी बात सच हुई तो ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा, मिस्टर दत्त गुस्से में बोले। मेरी बात सच ही है और ये साबित वो खुद करेगा। बस इन सब में मेरा नाम नहीं आना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि वो लोग ये कहें कि मैं अपने एक्स से बदला लेने के लिए ये सब कर रही हूँ। आप जानते हैं, हमेशा से मेरे लिए मेरा काम और ड्यूटी सबसे पहले आते हैं। उसी की खातिर मैं रिस्क लेकर यहाँ तक आई। दिव्याना उनके सामने मासूम बनने का दिखावा कर रही थी। मिस्टर दत्त ने उसकी बात पर हामी भरी और उसे वहाँ से भेज दिया। दिव्याना जिस काम के लिए वहाँ गई थी वो उसमें कामयाब हो गई थी। मिस्टर दत्त ने दिव्याना के जाते ही अमन की टीम को इमरजेंसी मीटिंग के नाम पर एजेंसी बुलाया। मीटिंग में आते ही मिस्टर दत्त सख्त आवाज में बोले, सही कहा है किसी ने, आँख मूंद कर भरोसा करना आपको अंधा बना सकता है। आप किस बारे में बात कर रहे हैं सर, जस ने पूछा। तुम सबके चेहरे देखकर साफ है कि तुम्हें इस बारे में पता है। अगली बार प्रोग्रेस रिपोर्ट 1 हफ्ते के अंदर आ जानी चाहिए। मिस्टर दत्त ने गुस्से में अमन की तरफ देखा। मैंने हर हफ्ते की प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको मेल की है सर, उसने शांति से जवाब दिया। जानते हैं काम थोड़ा स्लो चल रहा है, पर लावण्या अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले मिस्टर दत्त ने कहा, पर तुम लोगों के काम करने की इच्छा नहीं है। जब तुम्हारा हेड ही इस काम में इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर बाकी टीम से क्या उम्मीद करूं? मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ये करोगे। जब वो लड़की तुम्हारे ऑफिस में काम कर रही थी तो तुमने अब तक उससे सच का पता क्यों नहीं लगाया? वो लड़की विधिक राणा से जुड़ी हुई है और हम उससे काफी कुछ पता लगा सकते हैं। क्या तुम्हें ये बात मुझे बताना जरूरी नहीं लगा या तुम खुद ही सारे डिसीजन लेने लगे? मिस्टर दत्त की बात सुनकर उन चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा। लावण्या समझ गई थी ये किसका काम हो सकता था। हमें अभी भी डाउट है वो लड़की विधिक से जुड़ी हुई है या नहीं। आपको तो पता है सर, हमें उसका नाम तक नहीं पता। हमने उस लड़की का बैकग्राउंड चेक किया, वो इनोसेंट है और एक नॉर्मल हाई मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं। डाउट के चलते हम ऐसे ही उसे अरेस्ट नहीं कर सकते। हमारी आइडेंटिटी बाहर आने का रिस्क भी रहता है। लावण्या मिस्टर दत्त को समझाने की कोशिश कर रही थी, अगर मामला थोड़ा सा भी बिगड़ता तो बात उसके और अमन के रिश्ते पर आती, इसलिए वो आंशिका फेवर कर रही थी। अगर पता नहीं है तो पता लगाओ, तुम लोगों के पास 24 घंटे का टाइम है, मिस्टर दत्त ने कहा। वो लड़की आज ही ऑफिस छोड़कर जा चुकी है, उसे अपने आगे की स्टडी कंप्लीट करनी है, अमन ने बताया। लावण्या को आंशी के ऑफिस छोड़ने के बारे में पता नहीं था, और ये कब हुआ, उसने हैरानी से पूछा। वो आज सुबह ही रिजाइन करके गई है, एजुकेशन के लिए बाहर जा रही थी तो मैंने रोकना ही सही नहीं समझा, अमन ने जवाब दिया। और तुमने उसे आसानी से जाने दिया? आई डोंट नो एनीथिंग। तुम उसको कैसे भी करके वापस लाओ और इस 24 घंटे में उसके बारे में पता लगाओ कि क्या वो सच में विधिक की गर्लफ्रेंड है या नहीं। अगर वो उससे जुड़ी हुई है तो वो किसी कीमत पर यहाँ से जानी नहीं चाहिए, मिस्टर दत्त ने अपनी तरफ से डेडलाइन दे दी। अपना फैसला सुनाने के बाद मिस्टर दत्त वहाँ से चले गए थे। उनके जाने के बाद अमन ने लावण्या की तरफ गुस्से से देखा। एक वही थी जो आंशी को अरेस्ट करवाना चाहती थी। उसने उसे कुछ नहीं कहा और वहाँ से चला गया। ये तुमने क्या कर दिया दीवी, मुझे तुम्हें कुछ बताना ही नहीं चाहिए था। मैं क्यों भूल जाती हूँ, तुम वही हो जो सिर्फ अपने ही बारे में सोचती हो, लावण्या ने अपने मन में कहा और अमन के पीछे जाने लगी। अमन को जिस बात का डर था वही सब हो रहा था। वो आंशी को जिस खतरे से बचाने की कोशिश कर रहा था वो उस तक पहुंच चुका था। अब वो चाहकर भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकता था। चार बार समीक्षा कर दीजिएगा। एक स्पेशल थैंक्स उनके लिए जो कहानी पर अपना प्यार देते हैं।